الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور 230-29 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. 29 میں ایک کیس زیر بحث تھا کہ اگر کوئی طلاق کا معاملہ اس طرح کا ہو کہ شوہر نے اپنی بیوی کو بہت کچھ دے رکھا ہے اور اس وجہ سے وہ اگر طلاق نہ دے پائے کہ اگر میں نے کچھ واپس نہیں لینا اپنی بیوی سے تو پھر میں طلاق دوں گا تو بالکل کنگال ہو کر رہ جاؤں گا, تو اس صورت میں کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ اپنی طرف سے فدیہ دے کر طلاق حاصل کر سکتی ہے, اس شرط کے ساتھ کہ دونوں یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. کسی ایک کی طرف سے دباؤ نہیں ہونا چاہیے اور کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو پیسے دینے ہیں, کتنی چیز واپس کرنی ہے کتنی نہیں, یہ بیوی کا حق ہے, کیونکہ یہاں پر افتدت بہی کا لفظ آیا ہے واحد مؤنث کا, کہ وہ خاتون خود فیصلہ کرے گی کہ کیا فدیہ میں دے, یعنی جان چھڑانا. فدیہ اس رقم کو کہتے ہیں خواہ خدا کے حضور گناہوں کا سے جان چھڑانے کا ہو یا دنیا میں کوئی معاملہ ہو, تو اس کو فدیہ ہی کہتے ہیں عربی زبان میں, اسی سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے افتدت بہی. اور فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہے, ان کی خلاف ورزی نہ کرو, اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہ ظالم ہے. آگے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اس آیت پر بھی ہم بات کر چکے ہیں, کچھ تفصیلات رہ گئی تھی اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس آیت کو پیچھے الطلاق مرتان پر بھی عطف مانا گیا ہے اور اس کو فدیے والے کیس پر بھی عطف مانا گیا ہے. اگر تین طلاقوں والے طلاق مرتان پر مانیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دو طلاقوں میں آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو عدت کے درمیان روک لے اپنی بیوی کو, رجوع کر لے, اور چاہے تو عدت مکمل ہونے کے بعد اس کو آزاد کر دے. اگر وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا ہے تو دو طلاقوں کے بعد اگر پھر وہ تیسری طلاق دے, دو دفعہ رجوع کر لینے کے بعد اگر وہ تیسری طلاق دے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک لوگوں نے یہ رائے دی ہے اور یہ اکثریت ہے, بہت بڑی, یہ سمجھ لیجیے کہ جمہور امت کی بات ہے, کہ اگر دو طلاقیں رجوع کر لینے کے بعد تیسری طلاق دیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے نہ رجوع کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ وہ دوسرے آدمی سے شادی کرے عورت, اور وہ بھی قدرتی طور پر اپنی مرضی سے کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے, تو پھر یہ دونوں اگر چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھا جائے گا. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ یہ فی مفتدت بہی والے کیس کے اوپر عطف کیا جائے, کہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ جو کچھ بیوی کو دے رکھا ہے وہ واپس نہیں لیا جائے گا. اگر یہ ڈر ہو کہ دونوں طلاق نہیں دیں گے اور طلاق نہیں دیں گے اس وجہ سے کہ بہت کچھ دے رکھا ہے, تو پھر فدیہ دے گی بیوی, تو جو شوہر بیوی سے فدیہ لے کر طلاق دے گا, اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم طلاق دو گے تو پھر تمہارے لیے یہ بیوی جائز نہیں رہے گی, خواہ پہلی طلاق ہو خواہ دوسری ہو خواہ تیسری ہو, تو بیوی جائز نہیں رہے گی کہ وہ اس سے رجوع کر سکے یہاں تک کہ وہ دوسری شادی کر لیں, پھر وہاں سے طلاق ہو جائے. اس وجہ سے ہمارے ہاں جب خلا کا کیس چلتا ہے تو آیتیں تو یہی پیش نظر ہوتی ہیں, اور خلا میں حالانکہ مانا اس کو پیچھے جاتا ہے عطف, کہ یہ طلاق و مرتان پر عطف ہے, لیکن خلا میں کہتے ہیں کہ رجوع نہیں ہو سکتا, خلا میں کہہ دیتے ہیں رجوع نہیں ہے, کیونکہ یہاں سے یہ بات چھلکتی پڑ رہی ہے کہ یہ دراصل اسی کیس میں زیر بحث ہے جس میں فدیہ دینا معاملہ ہے. تو میں نے پچھلی دفعہ عرض کر دیا تھا کہ خلا کا سارا تصور ہی غیر قرآنی ہے, और ख़ास तौर से जो पाकिस्तान में नाफिज़ है या लोगों ने समझ रखा है, वो बिल्कुल ही ना सिर्फ़ गैर कुरानी है बल्कि वो ज़ालिमाना भी है। उसकी कोई हकीकत नहीं है, हक महर लेने का कोई हक किसी को नहीं है। खुला लेने के बाद बीवी तलाक़ लेगी, शौहर तलाक़ देगा, उसका सारा प्रोसेस वही होगा जो आम तलाक़ का होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें बीवी ने तलाक़ मांगी है, उसमें शौहर ने तलाक़ दी होती है। देनी तलाक़ शौहर ने ही है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अलबत्त ये केस अलग है कि एक शौहर ने अपनी बीवी को सब कुछ दे रखा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उसके नाम लगा रखी थी, अब वो डर रहा है कि मैं तलाक़ दूंगा वापस कुछ नहीं लेना। इस केस को अल्लाह ताला ज़ेरे बहस लेके आ रहे हैं, क्योंकि अल्फाज ये हैं कि तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुमने अपनी बीवियों को दे रखा है उसमें से कोई चीज़ भी वापस लो, सवाए इसके कि तुम ये डरो कि अल्लाह की हदूद की कायम नहीं रख सकते, तो फिर फ़दिया देने का। तो दोनों बातों को मिलाकर कि तुम तलाक नहीं दे, पैसा वापस नहीं लेना उससे कुछ भी, और तुम्हें डर लग रहा है कि तुम अपने हदूद पर कायम नहीं रह सकोगे, और फिर औरत फ़दिया देकर तलाक ले ले, तो इस सूरत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब इस शौहर को हक हासिल नहीं है कि वो रुजू करे या दोबारा निकाह करे। इद्दत गुजरने के बाद अब एक ही सूरत रह जाएगी कि वो ये मामला होगा। मैंने पिछली दफ़ा ये भी बात अर्ज़ कर दी थी कि तीन तलाकें इकट्ठी वो लोग भी यहीं से निकालते हैं, उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तलाक़ गलत तलाक़ है, जिसको हमारे फुकहा तलाक़ बिदत कहते हैं, उसका वो शरीयत का मसला नहीं रहता, कज़ा का मसला रह जाता है। कज़ा का मतलब है काजी साहब का मसला। तो वो दोनों पार्टीज़ के बयानत लेकर जो फ़ैसला भी करें वो कुरान हदीस की हदूद के अंदर रहकर तो वो दुरुस्त होगा, उसका इन आयतों से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे फरमाया कि इज़ा तल्लक्तुमुन निसा, ये 231 नंबर आयत है, व इज़ा तल्लक्तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना फअम्सिकुहुन्ना बिमारूफिन औ सर्रिहुहुन्ना बिमारूफ। जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको रोक लो मारूफ तरीके के साथ, या उनको रुख्सत कर दो मारूफ तरीके के साथ। या जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है कि अल्लाह ताला के सामने पाकिस्तानी लोग थे जो अपनी बीवियों को तलाक दे के पहले ही दिन से घर से रुख्सत कर देते हैं और इतनी नफ़रत करते हैं। बल्कि मेरे पास एक केस आया कि उसने सास ने कहा उसके कि अब तुम्हें तलाक हो गई है, हमारे घर का पानी भी तुम्हारे ऊपर हराम है। ये ज़रूरत सिर्फ इस वजह से होती है कि कुरान को हमने अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया हुआ है। तो कुरान का तर्जमा पढ़ना चाहिए ताकि छोटी छोटी बातें जो इस तरह की हैं वो हमें मालूम हो कि कुरान में क्या लिखा हुआ। तो फरमाया कि जब तुम औरतों को तलाक दो अपनी बीवियों को और वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएँ तो उनको रोक लो अच्छे तरीके से या रुख्सत कर दो। मतलब क्या हुआ कि बीवियाँ अपने घरों में रहेंगी, अपने शौहर के घर में रहेंगी, तलाक का ऐलान करने के बाद बीवियाँ अपने शौहर के घर में रहेंगी, इद्दत वहीं पूरी करेंगी। हाँ, अलग रहेंगे लेकिन रहेंगी शौहर के घर में, अभी निकाह कायम है। पिछले जो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि शौहर हकदार हैं कि इस इद्दत के दौरान वापस लौटा लें, तो ये उस वजह से उनको वहीं रहना चाहिए। तलाक के बाद इद्दत के टाइम में कुछ नहीं हुआ, तलाक निकाह कायम है अभी, किसी और जगह निकाह नहीं हो सकता। तो बस इद्दत गुजरने तक शौहर के घर में रहना है। उसके बाद फरमाया कि फअम्सिकुहुन्ना बेमारूफ, तुम उनको मारूफ तरीके से रोक भी सकते हो और मारूफ तरीके से रुख्सत भी कर सकते हो। मारूफ तरीका क्या है? जो अच्छे इंसानों का शेवा है, भले तरीके के साथ, इज्जत एहतराम के साथ, कुछ दे दिला के अपनी गाड़ी में छोड़ के आए, पूरे एहतराम के साथ, कोई गाली गलौज नहीं, कोई डांट डपट नहीं, कोई कुछ नहीं। आप बंदे मोमिन सोच समझ के तलाक का फैसला करता है और सोच समझ के तलाक को नाफिज करता है, और फिर इद्दत गुजरने के बाद सोचे समझे फैसले के मुताबिक एक इंसान को जिसकी हैसियत उसकी बीवी की रही है उसको उसने छोड़ने जाना है। तो मारूफ तरीके के साथ कुछ दे दिला के, कुछ नेकी करके, कुछ हुस्ने सलूक करके रुख्सत करेगा। तो फाम से कुहना बे मारूफ, रोकना है तो मारूफ तरीके से रोकना है और छोड़ना है तो मारूफ तरीके से, ये लाजम है। बंदा ए मोमिन, अल्लाह ताला ने आगे जाकर कहा है कि अच्छे लोगों से अल्लाह को यही तवक्को है कि वो ऐसा ही करेंगे। तो बल्कि सूरह निसा में जाकर ये भी कहा है कि उनको कुछ अरसे का खर्चा भी देना है बाद में, ठीक है, जब तक उनकी शादी नहीं हुई तो खर्चा भी उठा सकते हैं आप, क्योंकि वो आपकी बीवी रही है। तो ये मामला जो हैं ये सादा नहीं है। हमारे यहाँ तो बस ऐसा होता है कि जिसको तलाक दे दी है उससे बुरी दुनिया में कोई हस्ती नहीं है, उससे बदतरीन, उससे काबिल नफ़रत। मोमिन कभी गुस्से में तलाक नहीं देता, मोहब्बत के साथ समझते हुए, ठोस तरीके से, हमदर्दी के साथ केस को देखते हुए तलाक देता। आगे फरमाया, वला तुम से कुहन्ना ज़रारा लेता तदू, तुम उनको नुकसान पहुंचाने की गरज से नहीं रोकोगे कि हदूद से तजावुज़ करो, उनके ऊपर तादी करो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तलाक दे देते हैं वापस ले लेते हैं, तलाक दे देते हैं वापस ले लेते हैं तंग करने के लिए। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। इसी रवैये की वजह से अल्लाह ताला ने तलाक को भी दो तक महदूद कर दिया, और उसके बाद तीसरी के बाद ये सब कुछ सिलसिला ख़त्म हो जाता है। यानी बीवी को रोकने का अमल दो तलाक तक है, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है। तो फरमाया कि तुम उनको रोकोगे, उनको इस वजह से नहीं रोकोगे कि उनको नुकसान पहुँचाओ, यानी को तंग करने के लिए, जिच करने के लिए, कोई फ़ायदा उठाने के लिए, कि या उसके घर वालों को परेशान करने के लिए, या मारने पीटने के लिए, किसी इस तरह के मकसद के लिए रोका नहीं जा सकता। ऐसा जो करेगा उसके बारे में फरमाया कि वमन यफल जालिका फ़कत ज़लम नफ्सहु, जो ऐसा करेगा वो अपनी अपने ऊपर जुल्म ढाएगा। ये कुरान मजीद का बहुत दिलचस्प असूल है कि बसाहर दुनिया में हम क्या करते हैं कि मैंने आपको कोई नुकसान पहुंचाया, या आपको मारा, या आपको पीटा, या आपको गाली दी, या आपको बदनाम किया, आपकी चुगली की, या आपके ऊपर तोहमत लगाई, तो मैं समझ रहा होता हूँ कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, मैंने उसको खूब मज़ा चखा दिया है, मैंने उसको काफ़ी जलील कर दिया है, उसने मुझे एक कहा था मैं 10 सुना के आया हूँ। लेकिन ये करते हुए हम कर क्या रहे होते हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं क्यों, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन ये सारी चीज़ें वबाल बन के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए फरमाया कि जो ऐसा करेगा वो अपने ऊपर जुल्म करेगा, ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर सिर्फ जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर तो हो रहा है, जिसके ऊपर वो कर रहा है जुल्म तो हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। ख़वातीन चूँकि जिस्मानी तौर पर ताकतवर नहीं होती, और बाज़ मुआशरों में जो मुआशरती समाजी ज़वाबित होते हैं उसमें बेचारी कर भी कुछ नहीं सकती, जैसे हमारे मुआशरे में तलाक होने के बाद बीवी के लिए कोई जगह नहीं होती, बहन भाई कबूल करने को तैयार नहीं होते, और दूसरे लोग भी शादी करने को तैयार नहीं होते, तो इस वजह से वो फिर बाज़ जुल्म सहती हैं। तो फरमाया कि जो जुल्म करेगा, जुल्म की गरज से उनको रोकेगा, तो वो अपने ऊपर जुल्म ढाएगा, क़यामत वाले दिन उसको भुगतना पड़ेगा, एक एक लम्हे की अज़ियत वहाँ भुगतनी पड़ेगी। और क़यामत वाले दिन चूँकि सख्त सज़ा मिलनी है, नरमी कोई नहीं होनी उसमें, तो फिर जितनी तकलीफ़ उसको हुई है कम अज़ कम उतनी तो मिलेगी। उस कैफियत में से गुज़रना अगर एक महीने का था, तो एक महीना तो लाजमन उस कैफियत से मुझे गुज़रना पड़ेगा, और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम बाज़ कैफियतें समझ नहीं पाते। एक शख्सियत टूट के रह जाती है, बिखर के रह जाती है, तो असल में हम एक शख्सियत को कत्ल कर देते हैं। मैं कई सास जो आती हैं मेरे पास, या बहुएं आती हैं, तो मैं उनको यही कहता हूं कि हमारे जो समाजी निज़ाम है इसमें हम इंसानों को गर्दन काट के तो कम कत्ल करते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत को मार के ज़्यादा कत्ल करते हैं। एक शोख चंचल खातून हमारे घर में आती है बहू बनकर, और हम उसको दबा दबा के, उनको जुल्म करके उनका शख्सियत को डैमेज कर देते हैं, और ये अमल बहू की तरफ से भी होता है। बाज़ बहुएँ जो हैं वो सास की शख्सियत के लिए डैमेजिंग बन जाती हैं, क्योंकि अगर वो खामोश हैं, लिहाज करने वाली हैं, तो बहू उसे नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती है। तो ये सारा निज़ाम जो है, ये हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हम लोगों को कत्ल करने वाले ना बने, शख्सियात को गिराने वाले, शख्सियात को मारने वाले, बाज माँ बाप अपने सगे बच्चों के साथ ऐसा कर जाते हैं कि वो इस तरह से डांटते हैं, इस तरह से तनकीद करते हैं, बात बात पे उसकी गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसकी शख्सियत की अपनी पसंद की चीज़ें, उसको कबूल करना चाहिए, उसको जगह देनी चाहिए अपने घर में। हमारे पाकिस्तानी जहन में बस वही ठीक होता है जो मुझे ठीक लगे। ये सिर्फ वालदैन का मसला नहीं है, ये मैंने उलमा में भी देखा है, मैंने असातज़ा में भी देखा है, मैंने तहरीक के लीडरों में भी देखा है, मैंने बड़ी आला किस्म की शख्सियात में भी देखा है। उनका अपना जो मेयार है वही असल मेयार है, और नतीजा क्या निकलेगा कि मेरी आपकी बात कोई वजन नहीं रखती, वो हमाकत, बेवकूफ़ी, ना समझी, पता नहीं क्या क्या तबसरे कर देंगे। तो दूसरे बच्चे, ख़ास तौर से बच्चों की उम्र छोटी होती है, बहू बेटियों की, और बाज़ुकात सास जिस सादगी के साथ वो चीज़ों को देख रही होती है, बाज़ुकात बच्चे नहीं देख रहे होते हैं। माएँ, माएँ एक समझ लीजिए कि एक उबलता हुआ चश्मा होता है बच्चों के लिए, मोहब्बत का, अपनाइत का, इशार का, और बच्चे उसकी परवाह ही नहीं करते। वो ये समझते हैं कि बस माएँ होती ऐसी हैं, चुनाचे उनको डांट रहे होते हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल आप तोड़ के रख देते हैं शख्सियात को। तो शख्सियात को तोड़ने की बजाय उनको जगह दें, उनका एहतराम करें, उनकी पसंद का ख्याल रखें, उनकी नापसंद पर कोई, आपको जो बात पसंद नहीं है उनकी, उसके ऊपर कोई नेगेटिव तबसरा ना करें, बल्कि मोहब्बत के साथ उसको कबूल करें। ये लाजम है। शख्सियात का कत्ल उतना ही बड़ा जुर्म है जितना बड़ा गर्दन काट के कत्ल कर देना। इसलिए फरमाया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने नफ्स पर जुल्म करोगे, फिर क़यामत वाले दिन भुगतोगे। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़वा, और अल्लाह की आयतों को मजाक ना बनाओ, मजाक ना समझो, सीरियस लो। ऐसा ना हो कि उसको तुम ढीला डाला लो और बस मसला ख़राब हो। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इसको एक बेहतरीन गवर्नेंस वाली बादशाह की तरह का कानून की तरह लेना चाहिए, जिसमें आदमी को डर हो कि हर कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़ लिया जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह की नज़र से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और हमारे तो कानून जो होते हैं दुनिया में, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी रह जाती हैं, बाद का हम गच्चा देकर निकल जाते हैं, धोखा देकर निकल जाते हैं, लेकिन खुदा के सामने ऐसा नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला हमारे दिल की बातों को भी जानते हैं, हमारे धोखों को भी जानते हैं, हमारे इस तरह के फरेबों को भी जानते हैं, कोई हमें बचा नहीं सकेगा। तो इसलिए फरमाया फ़कत ज़ालमा नफ्सहु, जिसने ये हरकत की उसने समझो अपने ऊपर जुल्म ढा दिया। और अल्लाह की आयतों को संजीदा लो, मजाक ना समझो, इनको हल्के फुल्के कानून की तरह ना लो या इंसानी कानून की तरह ना लो, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है। अब ये बहुत सख्त है, दोनों बातें बहुत ही सख्त धमकी है अल्लाह की तरफ से कि मेरी बातों को संजीदगी से लो और अपने ऊपर जुल्म ना ढाओ। औरतों के ऊपर जुल्म करके, उनको घरों से निकाल कर, या ज़बरदस्ती उनके साथ कोई मामला करके, या रोक कर कि तुम उनको नुकसान पहुँचाओ या उनके ऊपर जुल्म ढाओ, ये काम नहीं करो। आगे एक दूसरे पहलू से अल्लाह ताला ने इस बात में अपना वज़न डाला है। फरमाया वज़्कुरु नेमत अल्लाही अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मा याएज़ुकुम बही। फरमाया कि ये एक हरकत ना करो बीवियों के साथ, इतना ज़ोर मुझे नहीं याद कुरान मजीद में किसी बात पे अल्लाह ताला ने लगाया हो। एक अदल के ऊपर इतना ज़ोर है, एक बीवियों के साथ ये मामला है। फरमाया कि तुम अपनी बीवियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करोगे। याद रखो इस नेमत को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की है, यानी तुम्हें मैंने दीन का अमानतदार बनाया है, अपनी नेमत तुम पर नाजिल की है, इस नेमत को, इस मेहरबानी का ख्याल रखते हुए मेरी आयतों को नरमी से ना लो, अपनी बीवियों पर यह जुल्म ना ढाना। इसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को खुदा की तरफ से कितनी तवज्जो हासिल है, और वो किस कदर चाहते हैं कि बीवियों पर जुल्म ना किया जाए, उनके साथ कोई जुल्म तादी ना हो। और फरमाया कि इसको याद रखो कि मैंने तुम्हारे ऊपर नेमत की है, और इसको याद रखो जो मैंने तुम्हारे ऊपर किताब और हिकमत नाज़िल की है। किताब और हिकमत जो है ये अल्लाह ताला के कुरान मजीद की ज़ुबान के दो अलग अलग मफहूम हैं। इसके अंदर किताब से मतलब आम तौर से हम किताब तर्जमा कर देते हैं, किताब कानून के मानी में आती है। जहाँ जहाँ ईमान के साथ और हिकमत के साथ ये लफ्ज़ आया है तो वहाँ कानून के मानी में, शरीयत के मानी में। तो फरमाया किस लिए कि मैंने तुम्हारे ऊपर शरीयत भी नाजिल की है और दानाई भी नाजिल की है। याएज़ुकुम बही, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी नसीहत करते हैं। तो अब ये जो किताब और हिकमत नाजिल हुई है तो इसके बाद एक दानाई और एक कानून दानी इंसानों के अंदर पैदा होनी चाहिए। यानी मुसलमानों के अंदर खुदा का कानून है, खुदा की तरफ से दी हुई हिकमत है, तो ये तो मुसलमानों को एक बुलंद दर्जे का इंसान बनाने वाली चीज़। लेकिन मुसलमान इस तरह की हरकतें करें कि उनसे जाहिल कौमें बेहतर महसूस हों, तो ये अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि तुम्हारे पास मेरा दीन है, मेरी हिकमत है, मेरा दिया हुआ कानून है, तो इस हिकमत और कानून के पेश नज़र तुम्हें अपनी बेगमात के साथ, अपनी बीवियों के साथ, अपने घर में रहने वाले कमज़ोरों के साथ दानाई वाला सलूक करना है, मेरी शरीयत के मुताबिक चलने वाला सलूक करना है। और अपना इसका ख्याल रखा करो कि मैंने तुम्हें दीन की नेमत देकर अपना नुमाइंदा बनाया है, तो मेरे दीन के नुमाइंदे के तौर पर तुम्हारा अखलाक ज़्यादा बुलंद होना चाहिए, ज़्यादा आला दर्जे का होना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ों, पैसे के पीछे या अपने किसी जज्बा इंतकाम के पीछे अपने इस मकाम को खोना नहीं चाहिए। खुदा के कानून की तौहीन नहीं होनी चाहिए और उस दानाई को नहीं खो देना चाहिए जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर नाजिल की है। तो तुम्हें तो एक आला दर्जे का हिकमत वाला, कानून की समझ वाला और खुदा के नुमाइंदा बनने वाले इंसान के तौर पर ये सारे काम करने हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से जो अहमियत है हमारी, उसको भी अल्लाह ने बयान किया है और अपने बंदों से ये तकाजा किया है कि वो अपने घरों का माहौल किस तरह से रखें। ये याद रखिए कि पाकिस्तानी मुआशरे की बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह हमारे घरों का बिगाड़ है। जिस दिन हमारे घर ठीक हो जाएंगे, हमारे सियासतदान ठीक हो जाएंगे, हमारे इदारे ठीक हो जाएंगे। जब तक घर ठीक नहीं होते तब तक कोई चीज़ ठीक नहीं होती। आज हम ये अमल शुरू कर दें कि अपने घरों को ठीक करें, माएँ और बाप अपने बच्चों को अदल पसंद, इंसाफ पसंद, सच बोलने वाला, झूठ से नफरत करने वाला, रिश्वत से नफरत करने वाला बना दें, तो आप देखिए कि पाकिस्तान एक जन्नत नज़ीर। अल्लाह ने हर तरह की मौसम दिए हैं, हर तरह की मादनियात दी हैं, हर तरह के रिसोर्सेज दिए हैं और जहानत में भी कमी नहीं दी है। लेकिन सिर्फ एक ही काम हम करते हैं कि हम घरों के अंदर बदमाश पैदा करते हैं, झूठे पैदा करते हैं, चुगलखोर पैदा करते हैं, लेग पुलिंग करने वाले पैदा करते हैं, बेईमानी के रास्ते पैदा करने वाले। हम शाबाश देते हैं। मैंने बाज़ झगड़ों में यह देखा है कि बाप अपनी बेटी को कह रहा होता है अपनी फूफी को सुनाओ अच्छी तरह से। ये इंसानियत नहीं है। तो हमारे घरों में जब से इंसानियत ख़त्म हुई है तो हमारे मुआशरे में ये कैसे हो सकता है कि मैंने घर से झूठ बोलना सीखा है तो दफ्तर में आके सच बोलूँगा? कैसे मुमकिन? ये कैसे हो सकता है कि मैंने घर में चोरी चकारी सीखी है तो मैं बाहर आकर चोरी चकारी नहीं करूँगा? ये कैसे हो सकता है कि मैंने घर से सीखा है कि पैसे देकर काम निकलवाए जा सकते हैं तो मैं बड़े होकर क्यों नहीं करूँगा? मुमकिन नहीं है। तो घरों के अंदर मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम सच बोलने वाले, दयानतदारी करने वाले, अदल करने वाले बच्चे पैदा करें, उनकी तरबियत करें। और ये याद रखिए कि हमारे अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं, मैं अक्सर उन पर बात करता रहता हूँ, लेकिन उनमें एक ख़राबी ये भी है जो मुझे कभी समझ नहीं आती कि मसलन बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी झूठी तारीफ करते हैं। झूठी तारीफ यानी मेरे अंदर वो खूबी है ही नहीं और मैं उसको बयान कर रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती कि इसके इससे हासिल क्या होता है। आदमी को अगर कोई चीज़ खुशी हासिल हो सकती है तो अपनी सच्ची किसी सिफत पर हो सकती है। वो झूठ बोल रहे होते हैं, मैंने ये कारनामा किया, किया होता नहीं है, मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैंने देखिए क्या शानदार काम कर दिया है। वो सलाहियत तुम्हारे अंदर है ही नहीं है, वो कैफियत तुम्हारे अंदर है ही नहीं है, उसके ऊपर कैसे आदमी खुश हो सकता। तो जब हम मैं लोगों को देखता हूँ कि झूठी तारीफ़ों पर खुश हो रहे होते हैं, मुझे तो बाद का दूसरा कोई तारीफ़ करे ना मेरी, तो मेरे अंदर अगर वो चीज़ ना हो तो मुझे हैरानी सी होती है कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, ये कोई खुश होने की चीज़ है। तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि भाई मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है, ये खूबी नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसको हमेशा सामने रखें कि मैंने और आपने अपने घर के अंदर चिराग जलाने हैं। कोई बाहर से आकर हमें अच्छा नहीं बना सकता और कोई बाहर से आकर हमें बुरा भी नहीं बना सकता। तो मेरा और आपका घर है, इसलिए अल्लाह ताला इस पर इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि शोहर और बीवी के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुक है उसको इस मारूफ के ऊपर खड़ा होना चाहिए, जो फाम सिकू हन्ना बे मारूफ और सर्र हो हन्ना बे मारूफ के साथ बोला गया है। हम चूँकि हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर अक्सर मुआशरों की तरह मर्दाना मुआशर रहा है, और मर्दाना मुआशरे की वजह से औरतों पे जुल्म भी होते रहे हैं, आज भी होते हैं, लेकिन इसको एक गलत रंग भी दिया जाता है। वो गलत रंग यह है कि ये शायद जेंडर यानी सिर्फ मुखालिफ की वजह से नफ़रत होती है। पाकिस्तानी मर्दों को सिर्फ मुखालिफ से नफ़रत नहीं है, उनका एक तहजीबी ढांचा है जिसमें औरतों को दबा के रखना, उनके ऊपर हुक्म चलाना, उनसे काम लेना, उनको तंग करना, ये हमारे उस कल्चर का हिस्सा है, ये औरतों से नफ़रत की बात नहीं है। तो हमें उन मुआशरों की तरह नहीं तोलना चाहिए जिन मुआशरों में हो सकता है ये बीमारियाँ हों। और मुझे वैसे लगता नहीं है कि कोई मुआशरा सिर्फ औरत से इस वजह से नफ़रत करता हो कि वो औरत है, नामुमकिन है, सिवाय इसके कि वहाँ किसी मज़हब ने या किसी कल्चर ने कोई ऐसी चीज़ पैदा कर दी हो। आगे फरमाया वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह बिकुल्ल शैइन अलीम, अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह से डरते रहो ये तकवा है, तकवा ही वो वाहिद चीज़ है जो हमें अकेले में, तन्हाइयों में, किसी की अदम मौजूदगी में, कमज़ोर के मुकाबले में जुल्म से रोकता है, बुराइयों से रोकता है। मिसाल के तौर पर छोटा सा बच्चा है, उसकी जेब में पैसे हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है और कोई गली में मौजूद नहीं है, मैं आराम से पैसे छीन के ले जा सकता हूँ, वो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन अब कौन सी चीज़ मुझे रोकेगी? सिर्फ अल्लाह का खौफ। तो इसलिए हर हुक्म के बाद अल्लाह ताला इस तरह की कोई बात करते हैं कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। कल तुमने खुदा को जवाब देना है, आज तुम इस बच्चे से पैसे छीन लोगे, आज तुम अपनी बीवी को धक्के दोगे या जुल्म करने के लिए अपने घर में रोक लोगे, कल खुदा के सामने तो जाना है, उस खुदा से डरो कल जिसका सामना होना है। एक और बात याद रखिए कि हमारे बहुत सारे मर्द जो होते हैं वो ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, अपनी बीवियों पर जुल्म कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा खन्नास, इंसानों को अपने बारे में ये ख्याल कि मेरी बात ठीक है। और अब मैंने देखा है कि छोटे बच्चों में भी ये चीज़ होती है, बहुत छोटे बच्चों में भी, क्योंकि हमने घरों का माहौल यही बनाया है कि मैं बस ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े, बहुत सारे शौहर, बहुत सारी बीवियाँ ये जुल्म कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं कि मैं सही हूँ बाकी गलत है। शौहर ये ख्याल करके कि मेरी बीवी गलत है, मैं उसको दबा सकता हूँ, सज़ा दे सकता हूँ, ये गलत होता है। और बीवियाँ ये सोचें कि मैं सही हूँ, मैं अपने मियाँ को तंग कर सकती हूँ। बहू ये सोचे कि मैं सही हूँ, मेरी सास गलत है। सास ये सोचे कि मैं सही हूँ, मेरी बहू गलत है। दोस्त दोस्त के बारे में सोचे कि मैं सही हूँ, ये गलत है। हमसाया हमसाये के बारे में सोचे, तो जान लीजिए कि ये शैतान के हत्थे चढ़ना है। दुनिया में कोई चीज़ जो मुझे सही लग रही है उसका पूरा 50% इम्कान है कि गलत हो, और जो बात मुझे गलत लग रही है उसमें 50% इम्कान है कि वो सही हो। हर चीज के बारे में, हद ये कि आंखों से देखी हुई चीज़ों के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तजुर्बात करके साबित किया है कि जिन चीज़ों को हम मुशाहिदा समझ रहे होते हैं, आंखों देखी चीज़ समझ रहे होते हैं, वो गलत होती है। और तंजीमों और तहरीकों में एक और चीज़ बड़ी गलत हो जाती है, और घराने के बारे में भी, कि एक बच्चे की गलती की वजह से पूरा घराना जेरे आताब आ जाता है। एक बच्चा या एक बच्ची से गलती होगी, पूरा घराना बदनाम है। एक मेंबर से गलती होगी, पूरी तहरीक बदनाम है। तो ये रवैया गलत है, ये जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए कि एक आदमी ऐसा है तो सारे ही ऐसे होंगे। ये ख़ास तौर से इल्मी लोगों तो कुछ नहीं करनी चाहिए जनरलाइजेशन के। आप किसी एक आदमी के, मिसाल के तौर पर अलमौरद है, तो अलमौरद की तहरीक के किसी एक आदमी की गलती को उछालें और कहें जी गांधी साहब भी ऐसे ही होंगे, इस्लाही साहब भी ऐसे ही होंगे, साजिद भी ऐसा ही होगा, खालिद भी ऐसा ही होगा, तालिब भी ऐसा ही होगा, आपने करना शुरू कर दिया, तो ये गैर इंसानी हरकत है, गैर अखलाकी हरकत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और फिर आप उससे एक असूल भी निकाल लें कि अलमौरदी होते ही ऐसे हैं, या तंजीम इस्लामी वाले ऐसे होते हैं, या जमात इस्लामी वाले ऐसे होते हैं, ये बात कहना हद से तजावज़ करना है। तो जितनी गलती है उतनी ही रहने देनी चाहिए। तो वत्तकुल्लाह वालमु अन्नल्लाह बिकुल्ल शैइन अलीम, ये जुमला अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है, ये धमकी भी है और कानून जो पीछे बयान हो रहा है उसकी तस्दीक भी है, या उसके बारे में उसकी बुनियादें भी बताई जा रही हैं कि अल्लाह ताला ने जो कानून दिया है वो अपने इल्म की बुनियाद पर दिया है, वो उसके पीछे जज्बात या जहालत या अदम वाकफियत नहीं है। अल्लाह ताला इंसानों की अंदर की जो मखलूकियत है उनकी, जो उनका खुल्क है, जो उनके अंदर की नफ्सियात है, जो उनके अंदर की दिमागी बनावट है, उससे भी वाकिफ है, इसलिए उस इल्म की रोशनी में ये कानून दे रहे हैं। और धमकी इस मानी में है कि तुम अपने बीवियों के साथ जो बुरा सलूक करोगे नुकसान पहुंचाने के लिए, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के इरादे को भी जानते हैं, और जो तुम जुल्म छुप छुपा कर करोगे और बीवी इस काबिल नहीं है कि बाहर मुआशरे में बता सके मुआशरे के खौफ की वजह से, तो उसको भी अल्लाह ताला जानता है। लोग तो नहीं जानेंगे लेकिन अल्लाह जानता है। तो इसलिए डर के रहो, अल्लाह की आयतों को नरमी से ना लो, बल्कि ध्यान रखो कि कल क़यामत वाले दिन खुदा के सामना होना है, उस वक्त भुगतना पड़ जाएगा तुम्हें। अब ये बात हो गई थी कि तलाक दो तो इद्दत पूरी हो जाए तो क्या करना है, और उसको अल्लाह ताला ने जुल्म को जो बीवी पर किया जा सकता है उसको चार हवालों से अपनी बात में जोर पैदा किया है कि कितने संगीन बात होगी। एक ये कि तुम अपने ऊपर जुल्म करोगे, दूसरा यह कि अल्लाह की आयतों को हल्की फुल्की चीज़ ना लो, मजाक ना समझो, तीसरी बात यह कि तुम्हें अल्लाह ने नेमत देकर अपना नुमाइंदा बनाया है, दीन का हामिल बनाया है, उसकी वजह से ऐसा ना करो, और चौथी बात यह फरमाई कि मैंने तुम्हारे ऊपर किताब और हिकमत नाज़िल की है, तो तुम्हारे पास अल्लाह का कानून और हिकमत है, तो तुम्हें तो बहुत दाना इंसान बनना चाहिए, बहुत हिकमत वाला, बहुत कानून दान किस्म का, तुम्हें तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और पांचवी बात यह कि अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं। तो ये इतनी अहमियत दी है अल्लाह ताला ने इस बात को कि बीवी को नुकसान पहुंचाने के लिए घर में रखा हुआ है, बीवी को नुकसान पहुंचाने के लिए घर में रखा हुआ है, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना ज़ोर लगा दिया अल्लाह ताला ने कि तुम्हें हर सूरत में ये नहीं करना कि बीवी को अपने घर में रखा हुआ है नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको अजियत देने के लिए, उसको जलील करने के लिए, उसको तंग करने के लिए, उसको सताने के लिए, ये नहीं हो सकता। तो ये इतनी सख्त है ये मकाम, इस मकाम पे आदमी आके घबरा जाता है कि क्या हो जाएगा। और शोहरों को तो ख़ास तौर से बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ उन्हीं से मुखातिब। अब अगला हुक्म फरमाया कि वाइज़ा तल्लक्तुमुन्निसा फबलगना अजलहुन्ना फ़ला ताजुलू हन्ना यन कहना अजवाजा हन्ना इज़ा तराज़ऊ बैनहुम बिलमारूफ़। जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो अब बीवियों पर तुम्हारा कोई हक नहीं, वो अपने बारे में जो चाहें फ़ैसला करें। चुनाचे तुम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते कि वो अपने होने वाले नए शोहरों से शादी कर लें, उसमें रुकावट नहीं बन सकते। इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ, जब वो आपस में मारूफ तरीके के मुताबिक, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई ख़राबी नहीं की है, कोई बेहयाई, कोई उरियानी, कोई फाशी, कोई गैर कह लीजिए बहुत दबाना किस्म का अमल, गैर यानी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसके खिलाफ अगर कोई अमल नहीं किया तो तुम उनको रोक नहीं सकते हो। जाहिर है कि जब तक आपके निकाह में थी आपको अल्लाह ने हक दिया था, आप उस इद्दत के दौरान में लौटा सकते थे, अब वो हक ख़त्म हो गया, अब आपको कोई हक हासिल नहीं है। निकाह के बाद जब इद्दत ख़त्म हो गई तो वो औरत आज़ाद है, आपका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपको हुस्न सलूक करना है। ठीक है, तो उस हुस्न सलूक में ये जायज़ नहीं करार दिया गया कि अपनी बीवी को निकाह करने से रोक सके आप अपनी मुतलका बीवी को जब इद्दत गुजर गई हो, तो अब आपका कोई हक हासिल नहीं है। ज़ालिका युवाज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जितना ज़ोर ऊपर लगाया था वैसा ही ज़ोर यहाँ लगा रहे हैं अल्लाह ताला। फरमाया कि ये मैं उसको नसीहत की जा रही है, उस शख्स को जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखता है। ये ईमान का तकाजा है कि बीवी को तलाक देने के बाद जब उनकी इद्दत ख़त्म हो जाए, तुमने उनको नहीं रोका इद्दत के दौरान, तो अब वो जहाँ चाहें शादी कर सकते हैं, तुम उनको रोक नहीं सकते हो। और इसमें रोकने ना रोकने में ईमान का वास्ता दिया जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह को ईमान मानने वाले हो और आखरत को मानने वाले हो तो अपनी बीवियों को नहीं रोकोगे दूसरी शादी से। ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो खैर रोके ना रोके सारा मुआशा रोक रहा होता है, तो अल्लाह ताला ने उसको भी मना कर दिया, गोया यूँ समझ लीजिए कि जब उसके सगे शोहर को जो तलाक दे चुका है उसको हक हासिल नहीं है तो मुआशरे को कैसे हक हासिल हो सकता है। और शोहरों को असल में इसमें अरबों के यहाँ की कोई गैरत भी हो सकती थी, हमारे यहाँ भी हो सकती है, और सताने के लिए भी होता, तो बस बीवी को अब शादी ना हो, रास्ते में रुकावट बनेंगे, जाके गलत बात पहुँचाएँगे दूसरे शोहर को जो होने वाला है, या बीवी को डराए धमकाएंगे कि तुमने शादी की तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तो ये सारे काम अल्लाह ताला ने मना कर दिए। ना कोई गलत बात पहुँचाएँगे, ना कोई तोहमत लगाएंगे शादी से रोकने के लिए, ना डराएं धमकाएंगे, तो ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। ये ईमान के वास्ते से अल्लाह ताला ने बात की है। उसके बाद फरमाया ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा अतहर काम है। हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा तज़किए और तहारत में फ़र्क नहीं कर पाते, वो जिस मानी में तज़किए को लेते हैं उसी मानी में अतहर को ले लेते हैं। हालांकि जब ये इकट्ठे आते हैं ख़ास तौर से तो इनके मानी में फ़र्क होता है, और आम तौर से जो अतहर है वो कभी कभी तहारत के लिए भी आ जाता है, लेकिन आम तौर से तहारत के लिए नहीं आता। पीछे हम जो महीज़ का केस पढ़ चुके हैं हैज़ के अंदर, उसमें भी अल्लाह ताला ने तोहर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पर भी निजात पाना है, बच जाना है, ये मफहूम इसके अंदर होता है। तो फरमाया कि ये तुम्हारे तज़किए के लिए ज़्यादा बेहतर है, और मुआशरे के अंदर फसादात से बचने के लिए ज़्यादा अतहर है। अतहर का ताल्लुक फसादात, खराबियाँ, तोहमतें, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आता है। और अज़का का मतलब होता है कि दिल की पाकीज़गी के लिए, जिस्मानी पाकीज़गी के लिए, अकीदे की पाकीज़गी के लिए यह आता है। तो पहले का तर्जमा पाकीज़ा करना चाहिए, यह तुम्हारे दिल दिमाग अमल की पाकीज़गी के लिए ज़्यादा बेहतर है, और अतहर का मतलब है कि तुम्हारे ख़ानदानी निज़ाम के लिए, मुआशरे के लिए, फसादात से बचने के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों का तर्जमा पाकीज़ा भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का हदफ डिफरेंट होगा। अज़का में मेरा नफ्स, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म मुराद होता है, और अतहर में बाहर से आने वाली तोहमतें, इल्ज़ामात, फितने, इस तरह की चीज़ें होती। तो जो तहारत हमें हासिल होती है वो भी हम मैल उतार के करते हैं, वो तज़किया नहीं होता। ये वाज़ रहना चाहिए कि जब मैं वज़ू करता हूँ या नहाता हूँ तो ये तोहर होता है, अथर होना होता है कि मैंने जो बाहर से मैल को चैल लगा था वो साफ़ कर दिया है। लेकिन तज़किया क्या होता है? तज़किया ये होता है कि मैं दिलो दिमाग से सही हो जाऊँ, मेरा दिल ठीक हो जाए, मैं ईमान वाला बन जाऊँ, मेरे अंदर से मुनाफ़क़त ख़त्म हो जाए, रियाकारी ख़त्म हो जाए, ये तज़किया होता है। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अपनी बीवियों के साथ ये मामला नहीं करोगे, उनको शोहरों से रोकोगे नहीं कि वो नए लोगों से शादी करने से, अगर वो मारूफ तरीके के मुताबिक कोई गलत काम नहीं करती तो उनको तुम रोक नहीं सकते हो। यही तुम्हारे लिए ज़्यादा तज़किए वाला है। जब कानून पे आदमी अमल करता है, ख़ास तौर से अल्लाह के दिए हुए कानून पर, तो ये इंसान की तज़किए का काम करती है। पूरा दीन, अगर कोई आदमी पूरे दीन को अपना ले अपनी ज़िंदगी में, तो समझ लीजिए कि उसने तज़किया हासिल कर लिया। तज़किया नाम इसी चीज़ का कि आपने अपना अकीदा दुरुस्त कर लिया, आपने अपने आमाल दुरुस्त कर लिए, आपने इबादत करना शुरू कर दी, आपने मुनाफ़क़त छोड़ दी, आपने रियाकारी छोड़ दी। और तज़किया किसको कहते हैं? हमारे यहाँ अहले तसव्वुफ़ ने तज़किये को एक अजीब से मानी दे दी है, चुनाचे अब वो एक ऐसी मंजिल है जिसको कोई हासिल नहीं कर सकता। और जो दावा करते हैं कि हमें तज़किया हासिल हो गया है, उसकी मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि ज़रा आप मुखालफत कर दें तो वो अलदुल खिसाम बन के सामने आ जाते हैं। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, फरमाया कि अल्लाह ताला जानते हैं तुम नहीं जानते हो। तो इसलिए तुम्हारा ख्याल है कि तुम बीवियों को रोक कर शादी से कुछ बेहतरी हासिल कर सकते हो, तो फरमाया कि नहीं, तुम नहीं जानते। तो पीछे मैंने जो कहा था कि इन अल्लाह बेकुल शैन अलीम, कानून देते हुए अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बुनियाद पर दिया है, तो यहाँ उसी बात को अपने अल्फाज में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी है, कौन सी अतहर है, कौन सी अज़का है। यहाँ रोक लेते हैं, आगे नया हुक्म आ रहा है और वक्त हो चुका है। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।